الحمد لله الذي وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو اس گھنٹے میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر پڑھتے ہیں، معارف القرآن جلد نمبر 5 سے، اور جو آیات ابھی چل رہی ہیں تو یعنی آیت نمبر 85 سے 89 تک، تو ان کے معارف و مسائل ہم اپنے آج کل کے مجالس میں پڑھ رہے ہیں. پچھلی مجلس وہ جمعے کے دن ہوئی تھی، تو اس میں اسی بات کو ہم آگے لے کر کے چلے تھے کہ جس سے سوال کیا جاتا ہے تو اس کو اپنے سے سوال کرنے والے یعنی سائل کے احوال کا علم ہونا یہ بہت ضروری ہے. تو جب بہت زیادہ سوال کرنے والے ہوں گے اور مسئول صرف ایک ہوگا تو اس کے لیے یہ بات ہیومنلی پاسبل نہیں ہے، یعنی انسانی مجبوریوں اور انسانی جو اس کے ساتھ عوارض لگے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے سارے طلباء شاگردوں یا اپنے سے سوال کرنے والوں کے احوال جان سکے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ایک عام مشاہدہ بھی ہے، ایون ہم سب لوگوں کا جو کہ اسکول کالج وغیرہ سے پڑھے ہیں، ایون جو مدرسوں سے بھی پڑھے ہیں، کہ جب ایک کلاس کے اندر 40 طلباء ہوتے ہیں، ایون 30 طلباء ہوتے ہیں، تو استاد کے لیے ان کے اوپر انفرادی توجہ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور پڑھائی کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے. اس وجہ سے ایک کلاس کے اندر کم طلباء کے ہونے سے جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے. تو اچھا اسکول وہی کہلاتا ہے جو بھی جس بھی ڈیفینیشن میں اس کو اچھا اسکول کہا جائے، اچھی سیکولر ایجوکیشن دیتا ہے یا اچھی جو ہے وہ دینی ایجوکیشن دیتا ہے. تو اچھا اسکول وہی ہوتا ہے جہاں پہ کلاس سائز جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہو. ٹھیک ہے، تو کلاس سائز چھوٹا ہو وہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے نا کہ جبکہ نمبر آف ٹیچرز جو ہیں وہ زیادہ ہوں. ٹھیک ہے، تو اب یہ عمومی طور پر معاشرتی لیول کے اوپر تو جب بات کی جائے گی تو پھر اس کا حل کہ بھئی ہمیں جو ہے نا وہ زیادہ ٹیچرز پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں زیادہ جو ہے وہ اکیڈیمک سٹاف کو جو ہے وہ پیدا کرنا ہے، ان کی ہمیں ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کا ایک بہترین حل کم از کم چھوٹے لیول کے اوپر، چھوٹے بچوں کے لیول کے اوپر اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین حل ہمیں پہلے سے دیا ہوا ہے. وہ کیا ہے کہ ہر بچے کی جو ماں ہے وہ اس کی تعلیم و تربیت کا خود انتظام. پچھلے جمعے کے درس میں کہ کوئی انسان دنیا کے اندر بغیر ماں کے نہیں آتا ہے، تو ماں تو ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے نا، تو ماں کیوں نہیں پڑھاتی اپنے بچوں کو، کسی دوسرے کے حوالے کیوں کر دیتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ بھاری بھاری فیسیں کیوں ادا کرتی ہے، خود کیوں نہیں پڑھاتی؟ آخر اس کی اور بچوں کی عمر کے اندر کم از کم 20 سال کا تو فرق ہوتا ہے نا، رائٹ؟ 14 سال کی ماں، 18 سال کی ماں تو آج کے دور میں بھی بہت کم ایسی دستیاب ہوتی ہیں جو 18 سال کی عمر میں ماں بن گئی، رائٹ؟ تو کم از کم 20-22 سال بڑی ہوتی ہے، اور یہ بچہ جو ہوتا ہے جب دنیا میں آتا ہے تو یہ اس سے 20-22 سال چھوٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اتنے گیپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ اتنا تو پڑھا سکتی ہیں نا، اس کو اتنا تو سمجھا سکتی ہیں کہ جس سے کہ اس کے ابتدائی سالوں کے اندر جو ہے وہ اچھی تعلیم و تربیت ہو جائے. آپ کو نہ صرف یہ کہ خود سیکھنے کی ضرورت ہے بلکہ اس ذمہ داری کا احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کے پاس پہلے سے علم موجود ہے، یعنی 1 سال کے بچے کے لیے جتنے علم کی ماں کو ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے اس کو کوئی ماسٹرز کی ڈگری تو نہیں چاہیے ہوتی نا، اس کے لیے کوئی بیچلرز کی ڈگری، کوئی پی ایچ ڈی تو نہیں کرنا ہوتا 1 سال کے بچے کو پڑھانے کے لیے، رائٹ؟ एक साल के बच्चे को भी पढ़ाना होता है, उसके लिए भी हमारे मशायख ने तरीके बताए हैं, ठीक है। अलिफ बा ता नहीं पढ़ाना होता, लेकिन तरीके होते हैं उसको भी तालीम देने के। बहरहाल, तो इतने छोटे बच्चों को जो है वो माएँ खुद पढ़ाएं, और फिर जैसे जैसे वो और बड़े होते जाएं तो फिर बाप भी पढ़ाएं, ठीक है ना। बाप के पढ़ाने के ऊपर भी पिछली मजलिस के अंदर बड़ी काफ़ी सारी बात हुई थी। बहरहाल, फिर इल्म के मौजू के ऊपर कुछ बात हुई थी कि इल्म जो है वो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है इल्म का होना, क्योंकि इसी नेमत के बाद सबसे ऊंचे दर्जे की नेमत की बारी आती है, वो है हिदायत की नेमत, ठीक है। हिदायत की नेमत सबसे बड़ी नेमत है कि किसी इंसान को हिदायत पाने की तौफीक मिल जाए, ये सबसे बड़ी नेमत है, क्योंकि इससे फिर उसकी हमेशा हमेशा की जिंदगी कामयाब बन जाती है, ठीक है। हिदायत की नेमत किस नेमत के ऊपर डिपेंड करती है, हिदायत की नेमत किस नेमत के ऊपर डिपेंड करती है, किस नेमत के ऊपर खड़ी होती है, वो इल्म की नेमत होती है, ठीक है। तो इल्म की नेमत फिर बस नंबर 2, सबसे बड़ी नेमत नंबर 2 कौन सी हुई, इल्म की नेमत, ठीक है। तो इतनी बड़ी नेमत, जाहिर सी बात है कि जितनी बड़ी नेमत होगी तो उतना ही बड़ा जो है ना वो उसकी यानी कदर कीमत भी होगी, और उतनी ही बड़ी जो है ना वो उसका फिर हिसाब भी होगा, उसकी जो है उसके ऊपर सवाल भी होगा। इल्म की नेमत इतनी बड़ी नेमत कि अगर उसकी कदर कर ली, अगर उसकी कदर कर ली, उसको सही इस्तेमाल कर लिया अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक, तो फिर कामयाबी ही कामयाबी, और इतने बुलंद दर्जात अल्लाह ताला ता फरमाते हैं जितना किसी और को नहीं मिल सकते सवाए अम्बिया कराम के, किसी और को इतने बुलंद दर्जात नहीं मिल सकते अगर इल्म की नेमत की कदर कर ली। लेकिन अगर इल्म की नेमत की कदर नहीं करी, उसको अब्यूज किया, उससे गलत फायदा उठाया, तो सबसे बदतरीन दर्जा भी फिर उसी को मिलता है, यानी इल्म वाले को ही मिलता है, ठीक है। तो इसमें फिर उलमाए यहूद का जिक्र अल्लाह ताला ने फिर कई जगहों पे कुरान मजीद के अंदर भी किया है, और यहाँ पे तफसीर में भी हम उन्हीं का पढ़ रहे थे कि उलमाए यहूद जो थे उनके पास कितना ज्यादा इल्म था, कितना तफसीली इल्म था, कितना एग्जैक्ट इल्म था उनके पास, ठीक है। तो उसमें फिर ये वाली हदीस जो पेज नंबर 526 के ऊपर है, 526 के मुसनद अहमद में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि कुरैश मक्का जो चा व बेजा सवालात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते रहते थे, बेवकूफ़ी के सवालात हैं, बात समझ में आती नहीं है, और जो है वो बस उल्टे सीधे अपना अपनी छोटी समझ की बुनियाद पर जो है वो बस एतराज़ बस एतराज़ बस एतराज़, आपको बिग पिक्चर का पता ही कोई नहीं है। ये जो मक्का मुकरमा के लोग होते थे, ये थोड़ा इल्म रखते थे, ये ज़्यादा इल्म नहीं रखते थे, ठीक है। अच्छा, अगर इल्म की के दरजात बनाए जाए ना उस ज़माने में, उस जमाने में इल्म के दरजात कि किसके पास सबसे ज्यादा इल्म था, किसके पास उससे कम इल्म था, किसके पास उससे कम इल्म था, तो हमारे सामने ये तस्वीर आती है उस वक्त की दुनिया की कि सबसे ज्यादा इल्म जो था वो यहूद के पास था, ठीक है, उलमाए यहूद। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इल्म किन के पास था जी, कोई आपने से बताया? दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इल्म किन के पास था, उस जमाने की बात हो रही है, दूसरे नंबर यहूद के बाद किसके पास इल्म था? एनीवन? नसारा के पास, बिल्कुल सही, ठीक है ना, नसरानियों के पास, उलमाए नसारा, ठीक है, तो उनके पास दूसरे नंबर पर, ठीक है, लेकिन इतना एग्जैक्ट इतना तफसीली नहीं था जितना कि यहूदियों के पास था। तीसरे नंबर पर किन के पास इल्म था उस जमाने में, तीसरा नंबर किन का आता है इल्म के अंदर? मैं नहीं, जमाने जाहिलियत की बात कर रहा हूँ, उस जमाने में जो कुफार का मुआशरा था उनके अंदर तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इल्म किन के पास था? नंबर 3, जी बिल्कुल सही फरमाया, कुरैश मक्का के पास, ठीक है ना, हम काफिरों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कुरैश मक्का के पास तीसरे नंबर पर इल्म था, ठीक है। भाई ईसाई पादरी तो दूसरे नंबर पर आ गए ना, ठीक है। तीसरे नंबर पर कुरैश मक्का, इनके पास भी इल्म था, ये भी जानते थे कि साले अलैहि सलाम कौन थे, इब्राहिम अलैहि सलाम कौन थे, इब्राहिम अलैहि सलाम का दीन क्या था, इनको भी पता था, कुरैश मक्का को भी पता था कि वो शिर्क नहीं किया करते थे, हूद अलैहि सलाम कौन थे, हूद अलैहि सलाम की कौम के ऊपर कैसा अजाब आया था, राइट। इनको भी पता था कुरैश मक्का को कि हज जो है उसका सही तरीका क्या है, ठीक है ना। इनको पता था कि हज जो है ना वो कहाँ पर होता है, अरफा के अंदर होता है, ऐसे जाना चाहिए, ये महीने होते हैं हज के, ये जो है वो मुहर्रम महीने होते हैं जिनके अंदर किताल जायज नहीं है। कुरैश मक्का को इतना इल्म था, ये बिल्कुल जाहिल उज्जट गवार किस्म के लोग नहीं थे, लेकिन जितना उलमाए नसारा के पास इल्म था उतना इनके पास इल्म नहीं था, ठीक है ना। तो जब नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर वही नाजिल हुई हिरा के पहाड़ के अंदर, तो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हैं वो नबी अलैहिस्सलाम को कहाँ लेकर के गईं, किसके पास लेकर के गईं, ठीक है ना। अपने कजन ये वरका बिन नौफिल, वरका बिन नौफिल अगरचे के कुरैश के कबीले के थे, लेकिन इन्होंने ईसाई पादरियों से तौरात और इंजील का इल्म हासिल किया हुआ था, ठीक है ना। तो ये ईसाई मजहब के ऊपर थे, यानी इस्लाम के ऊपर थे, ईसा अलैहि सलाम वाले दीन फितरत उस जमाने में जिसको कहा जाता था, ठीक है। तो इन कुरैश मक्का से ज्यादा इल्म ईसाइयों के पास था। अच्छा, कुरैश मक्का के बाद किन की बारी आती है, कुरैश मक्का के बाद किन की बारी आती है, अगर उस जमाने में जो कल्चर्स या जो जो सिविलाइजेशंस मौजूद थी, ठीक है, जिन्होंने जरा सीरत के बारे में कुछ ज्यादा पढ़ा है या ज्यादा सुना है तो उनको इसका अंदाजा होगा, ठीक है, कि कौन कौन सी सिविलाइजेशन उस जमाने में रहा करती थी। जी, आतिश परस्त, मजूसी, यानी जो फारस के रहने वाले थे, अहले फारस, ठीक है ना, ईरान और उसके इर्द गिर्द के जो इलाके थे, ये चौथे नंबर पर आते हैं, चौथे नंबर पर आते हैं, ठीक है। इनके बाद बताएं और मजीद सिविलाइजेशंस भी तो थी ना उस जमाने में, ठीक है। तो पांचवा नंबर इल्म के एतबार से किन का नजर आता है, यानी नीचे, हम नीचे जा रहे हैं ना, ऊपर से नीचे जा रहे हैं इल्म में, तो आतिश परस्तों के बाद। जी, आपने क्या पहले से कुछ सुना होता है, माशाल्लाह सही जवाब दे रही है बिल्कुल। जी, हिंदुओं के पास, अहले हिंद के पास, ठीक है, इनके पास जो है वो बिल्कुल इल्म नहीं था, यानी बहुत ही कम इल्म था, ठीक है ना, और बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ इल्म था हिंदुओं के पास, ठीक है। अच्छा, अब इनके बाद हमें मालूम ज्यादा नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन चाइनीज सिविलाइजेशन भी होती थी, है ना। ये चीन जो है ना, ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, ये उस जमाने में भी मौजूद थे ये चीनी लोग, ठीक है। नूह अलैहि सलाम के चार बेटे थे ना, तो चार में से एक जो है वो चीनी वगैरह किस्म की उसकी शक्ल सूरत थी, तो उनकी औलाद जो है वो इस किस्म की निकली है, ये सिविलाइजेशन भी मौजूद थी, ठीक है। अब आप ये देखें कि इस्लाम किन लोगों ने कबूल किया, सबसे ज्यादा इस्लाम इन, अगर हम छह छह सिविलाइजेशंस को देखें, यहूद, नसारा, ठीक है। अच्छा, इनमें एक तो सॉर्ट ऑफ रह गई है जो कि एक्चुअली नसारा में ही फिट हो जाते हैं, जिनको रोमी कहा जाता है, रोमी, रोमन्स, ठीक है। ये सारे के सारे असल में ईसाई बन गए थे, तो फिर इनको ईसाइयों के अंदर ही आप काउंट कर सकते हैं। ईसाइयों के अंदर रोमन्स भी थे, ईसाइयों के अंदर अफ्रीकन्स भी थे, ये जो इजिप्ट था ना ये भी पूरा का पूरा ईसाई हो चुका था, तकरीबन पूरा का पूरा ईसाई हो चुका था। हबशा वगैरह का जो इलाका था ये भी पूरा का पूरा ईसाई हो चुका था, ठीक है। तो यहूद, नसारा, अरब के लोग, क्योंकि कुरैश मक्का जो है ये बेसिकली सिर्फ कुरैश मक्का नहीं कहना जाना चाहिए बल्कि अरब के जो कबाइल थे, ठीक है ना, जो कि इवन मदीना तैयबा में भी रहते थे और अरब के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रहते थे, तो ये तीसरी सिविलाइजेशन बनी, यहूद, नसारा, अहले अरब, फिर उसके बाद अहले फारस, फिर उसके बाद अहले हिंद, और फिर आखिर में छठी, अगर आप चाइनीज को भी काउंट कर लें इनके अंदर। इस्लाम किसने कबूल किया, सबसे ज्यादा इस्लाम किसने कबूल किया? जी, ये कोई पूछने वाला सवाल तो है नहीं वैसे। लोग सोच में पड़ गए, सबसे ज्यादा इस्लाम किसने कबूल किया? अहले अरब ने कबूल किया, राइट, अहले अरब ने कबूल किया। दूसरे नंबर पर इस्लाम कबूल करने वाले कौन लोग बने, दूसरे नंबर पर, जिन्होंने फिर उसके बाद इस्लाम को कबूल किया? जी, नसरानी, बिल्कुल सही फरमाया। दूसरे नंबर पर नसारा ने कबूल किया, यानी ये शाम के जितने लोग थे, ये शाम पूरा का पूरा नसारा के पास था, ठीक है ना। अरब के ये जो इजिप्ट था, ये नसारा के पास था, ठीक है ना। यमन, यमन भी जो है वो नसारा के पास, बहुत सारा यमन के ऊपर नसारा का कंट्रोल था, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर अहले अरब के बाद नसारा ने इस्लाम कबूल किया। तीसरे नंबर पर किसने कबूल किया? बाद में जाकर के 100 साल 200 साल के बाद जाकर के फिर अहले फारिस ने कबूल किया, ठीक है। अच्छा, फिर सबसे कम इस्लाम किसने कबूल किया, यानी नबी अलैहिस्सलाम के सामने सुपुर्दगी सबसे कम किसने इख्तियार करी? यहूद ने इख्तियार करी, ठीक है ना, ज्यूज ने। ये सबसे कम इन्होंने ये सुपुर्द किया अपने आप को नबी अलैहिस्सलाम के, ठीक है ना। ये कौन थे? ये यहूद थे, ठीक है। हिंदुओं में इस्लाम कब आया? बहुत बाद में जा करके जो मुसलमान वहां पे जा करके सेटल हुए, ठीक है ना, तो उनके असरात की वजह से हिंदुओं ने भी इस्लाम कबूल किया, बड़ी तादाद ने कबूल किया, लेकिन ओवरऑल जितनी इनकी तादाद थी, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो पूरे मिडल ईस्ट की पॉपुलेशन से कई गुना ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहूद और नसारा, बेशक ज्यादा कम यहूद ने कबूल किया, नसारा ने ज्यादा कबूल किया, लेकिन अगर इंडिया से कंपेयर किया जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि उसमें से जिन हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया उनका प्रोपोर्शन बहुत कम बनता है। ज्यादातर मुसलमान यहाँ पे कौन है? जो के अफगान हैं, या जो के यानी फारस से यहाँ पर आए, या जो के अरब से यहाँ पर आए, या जो के तुर्कों में से यहाँ पर आए, ज्यादा वो लोग हैं। पुराने हिंदुओं में बहुत कम लोग मुसलमान हुए हैं, ठीक है। आज भी यही मामला है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और चाइना की तरफ अगर आप चले जाएं तो वहां पर तो सबसे ज्यादा कम लोग मुसलमान हुए, बिल्कुल बिल्कुल तकरीबन जैसे हो ही नहीं, बहुत ही कम लोग, ठीक है ना। काजगर वगैरह, तुर्क जो नस्ल कहलाती है, तो ये बहुत कम काजगर वगैरह के इलाके के लोग जो है वो मुसलमान हुए। उसके पीछे चले जाएं चाइना के अंदर तो कोई भी मुसलमान नहीं होता नजर आता आपको, है ना। गिनती शायद बहुत ही गिनती के मुसलमान आपको नजर आएंगे, हैं तो वैसे चाइना के अंदर बहुत ही कम। तो इन लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि जिन्होंने सबसे ज्यादा अपने आप को नबी अलैहिस्सलाम के सामने सुपुर्द कर दिया? ये मीडियोकरी इल्म वाले लोग थे, इनके पास बहुत थोड़ा इल्म था, अगरचे के बिल्कुल जीरो नहीं थे ये लोग, लेकिन थोड़ा इल्म था। इस सिविलाइजेशन को हम देखते हैं अरब, इन्होंने सबसे ज्यादा अपने आप को सुपुर्द किया। जिनके पास इनसे ज्यादा इल्म था, नसारा, तो इन्होंने जो है वो पूरा अपने आप को सुपुर्द नहीं किया, जैसे कि अहले अरब ने पूरा अपने आप को सुपुर्द कर दिया, नसारा ने पूरा अपने आप को सुपुर्द नहीं किया, लेकिन बड़ी तादाद में सुपुर्द किया। जिनके पास सबसे ज्यादा इल्म था, सबसे ज्यादा तफसीली इल्म था, अनफॉर्चुनेटली उनके लिए अपने आप को सुपुर्द करना सबसे ज्यादा मुश्किल हो गया, और उन्होंने नहीं सपोर्ट किया अपने आप को, सिवाय गिनती के चंद लोग यहूद में से। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि जहां पर बिल्कुल भी इल्म नहीं था, अच्छा, अहले फारिस ने अपने आप को बिलाखिर जाकर के इस्लाम के सामने अपने आप को झुका दिया, लेकिन अहले फारिस का झुकाना ऐसा झुकाना था जो कि कुछ मजीद अरसा गुजरने के बाद ये रिवर्ट हो गया, ये रिवर्ट हो गया, ठीक है ना। तो आप देखते हैं कि ईरान के जो लोग हैं, ये फिर यहूद के जेरे असर आकर के इन्होंने जो है ना, ये ओवरऑल पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ने ईरान की, इन्होंने शियाइज्म को कबूल कर लिया, शियाइज्म, ठीक है ना। ये शियाइज्म क्या है? ये यहूदियों की पैदावार है, ये यहूदियों की बनाई हुई एक चीज है, ठीक है ना। तो इनका जो मामलात है ना, ये बहुत उलमाए कराम ने 40 सिमिलैरिटीज लिखी हैं, 40 सिमिलैरिटीज, यानी मुशाबहतें, मुशाबहात, ठीक है ना, जो कि शियाओं में और यहूद में है, यहूद और शियाओं के दरमियान ये सिमिलैरिटीज हैं, 40 सिमिलैरिटीज, कम है ये कोई 40 सिमिलैरिटीज, राइट? तो जिनके पास सबसे ज्यादा इल्म था और जिनके पास इल्म के अंदर जो है ना वो सबसे लोएस्ट मुकाम था ना इल्म के अंदर, यानी इल्म था उनके पास लेकिन बहुत ही थोड़ा, ये दोनों एक हो गए, यहूद और ये शिया रवाफिज, ये एक हो गए, ठीक है ना? वो इस्लाम ला करके रिवर्ट हो गए, वापस चले गए, ठीक है ना? और वो इस्लाम ही नहीं लेकर के आए। हिंदुओं का तो वो तो जीरो इल्म वालों में आते हैं ना, हिंदू और चाइनीज जो है ना ये तो तकरीबन जीरो इल्म के अंदर आते, ठीक है? तो इनका क्या हुआ, इन्होंने बिल्कुल भी अपने आप को सपोर्ट नहीं किया, ये बिल्कुल वही अपने भजन के अंदर और नाच गाने के अंदर और ऊटपटांग के 1.5 करोड़, जैसे हमारे एक प्रोफेसर साहब होते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो उनके साथ जो है ना वो एक हिंदू प्रोफेसर होता है, तो उसने एक दिन उनको बताया कि हमारे आजकल जो है ना वो 3.5 करोड़ खुदा हैं। कितने खुदा हैं? 3.5 करोड़ खुदा हैं हिंदुओं के आजकल के जमाने में, और हो सकता है वो बड़बड़ा करके आप जो है 4.25 करोड़ बन चुके होंगे, ठीक है? क्योंकि हर मखलूक जो है वो उनके नजदीक काबिले इबादत है, तो वो उसको खुदा बना लेते हैं, जिससे भी जो भी फायदा नजर आए ना उसको खुदा बना लेते हैं, ठीक है? तो जो सबसे जीरो थे ना वो तो बिल्कुल ही ईमान नहीं लेकर के आए, ठीक है? और फिर जो है वो ये चाइनीज वगैरह जो है ये इनमें भी, अच्छा ये आपने अच्छा सवाल किया, रशियन स्टेट्स में मुसलमानों का ओरिजिन क्या है? रशियन स्टेट्स के अंदर जो मुसलमान है ना वो तुर्क में आते हैं, तुर्कों में आते हैं, ठीक है? तो तुर्क जो है ना ये अगरचे के बिल्कुल पीछे चले जाएं तो शायद इनका ओरिजिन चाइनीज के साथ ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना? रशियन स्टेट्स होते हैं, ठीक है? यानी ये जो जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स होती है ना, तो वो तो आज के रशिया के अंदर तो वो शामिल नहीं है, सोवियत यूनियन के अंदर वो शामिल थी, लेकिन आज के रशिया में ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, आजरबाईजान, तुर्कमानिस्तान और ये सारे जो हैं, तो ये इनके जो लोग हैं ये तुर्क सिविलाइजेशन कहलाती है, ठीक है? ये भी जो है ना वो बहुत लंबे अरसे तक इस्लाम से दूर रहे थे, लेकिन फिर बिलआखिर ये लोग जो है मुसलमान हो गए थे। तो इनका जो ज़्यादा क्लोजर प्रॉक्सिमिटी बनती है ना ये इनके साथ बनती है, अहले फारिस के साथ इनकी बनती है, ठीक है? तो चाइनीज जो है वो बेसिकली जो आज का चाइना है ना, आज का जो चाइना है, जब हम चाइनीज की बात करते हैं तो हम उन लोगों की बात करते हैं, उनके अंदर बहुत थोड़े मुसलमान हैं, गोया उतने ही हैं जितने के हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान है, ठीक है? बहरहाल ये एक रफ एक सॉर्ट ऑफ पिक्चर बनती है उस जमाने के सिविलाइजेशंस की, के सबसे कम मुसलमान कौन हुए, उनके ज्यादा उनसे ज्यादा मुसलमान कौन हुए, सबसे ज्यादा मुसलमान कौन कौन हुए, और कौन जो है वो मुसलमान होकर के वापस पलट गए, ठीक है? आज भी ये इवन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में भी, कौन सा वाला मुल्क है जिससे पाकिस्तान की बड़ी दोस्ती शोस्ती की कोशिश करते रहते हैं ये लोग, ईरान के बिल्कुल बराबर में है, जिसके अंदर कुछ जंग शंग भी हो रही थी पिछले दिनों, क्या नाम है उस कंट्री का, वो पूरा का पूरा शिया कंट्री है वो बेसिकली, ठीक है? तो इस्लाम के नाम पे बड़ा उनके शोर मचाते रहते हैं, लेकिन है असल में वो सारे के सारे शिया। एनीवे तो ये जो सर्टिफाइड इल्म होता है ना ये अक्सर, ये नहीं इराक नहीं, ये अक्सर जो है ना ये बहुत बड़ा हिजाब बन जाता है सर्टिफाइड इल्म के, हाँ जी मुझे तो सनद मिली हुई है, मुझे जो है ना वो तो एक बकायदा ठप्पा लगा हुआ है मेरे ऊपर इल्म का, ठीक है? ये बहुत बड़ा जो है वो हिजाब बन जाता है इंसान के लिए, झुकना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है इसके बाद, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने फिर हमें इसका जो है वो कुरान मजीद के अंदर बार बार, कितना अहले यहूद का कितना जिक्र है कुरान मजीद के अंदर, कितना जिक्र है कुरान मजीद के अंदर, ठीक है ना? और शुरू ही में बिल्कुल इब्तदाई के अंदर अल्लाह ताला ने जो हमें दुआ सिखाई उसके अंदर भी है, इहदिना सिरात अल-मुस्तकीम सिरात अल-लज़ीना अनअमत अलैहिम गैर अल-मग़दूब अलैहिम वलद-दाललीन, ठीक है ना? कि गैर अल-मग़दूब का जो है ना वो रास्ता, उसके ऊपर मुझे आप हिदायत ना दीजिएगा। तो अलमग़दूब कौन है? ये वो सर्टिफाइड स्कॉलर्स हैं, ठीक है, जो कि अहले यहूद से ताल्लुक़ रखते थे। तो इनका वाकया यहाँ पे जो बयान किया है, तो इन्होंने कहा था कि भैया जा करके ना तुम ये कुरैश मक्का से कहा कि तुम जा करके इनसे सवाल करो, 3 सवाल करो, अगर इन्होंने तीनों का जवाब नहीं दिया तो ये नबी नहीं है, अगर इन्होंने तीनों का जवाब दे दिया यानी क्लेम किया कि मुझे तीनों का जवाब आता है तो भी ये नबी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इन्होंने दो का जवाब दिया और एक का जवाब नहीं दिया तब ये नबी है, ठीक है। सीरिया, क्या क्या सीरिया, नहीं, मैं उधर की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स यानी जो ईरान के नॉर्थ में जो कंट्रीज है, सीरिया तो ईरान के वेस्ट में है। अच्छा, तो ये वाकई सवाल जो है वो आर्मेनिया मुसलमान कंट्री नहीं कहना, आजरबाइजान, जदाकुम, आजरबाइजान, ठीक है ना, ये आजरबाइजान जो है ना ये शिया कंट्री है बेसिकली। अच्छा, वाकई सवाल मक्का मुकरमा में पेश आया या मदीना मुनव्वरा में, तो फरमाते हैं कि इससे पहले यहाँ एक बात और काबिले नजर है कि शान नुजूल के मुताल्लिक जो दो हदीसें इब्ने मसूद रतान इब्ने अब्बास रतान की ऊपर नकल की गई हैं उनमें से इब्ने मसूद रतान की रिवायत के मुताबिक ये सवाल मदीना तैयबा में पेश आया, और इसीलिए बाज़ मुफस्सरीन ने इस आयत को मदनी करार दिया है, अगरचे के अक्सर हिस्सा सूरह बनी इसराइल का मक्की है, और इब्ने अब्बास रतान की रिवायत का ताल्लुक मक्का मुकरमा के वाक़े से है, इसके मुताबिक ये आयत भी पूरी सूरत की तरह मक्की बाकी रहती है, इसीलिए इब्ने कसीर ने इसी एहतमाल को राजह करार दिया है, और इब्ने मसूद रतान की रिवायत का जवाब ये दिया है कि यह मुमकिन है कि इस आयत का नुजूल मदीना तैयबा में दूसरी मरतबा हुआ हो, जैसा कि बहुत सी आयात कुरान का नुजूल मुकर्रर सब उलमा के नज़दीक मुसल्लम है। ओह नहीं, फिर मैं पीछे पीछे बढ़ा, सॉरी। अच्छा, बल्कि अच्छा ही हुआ, गलती से एक चीज़ याद आ गई, एक मिनट ज़रा आप होल्ड कीजिएगा इसको, पॉज। पेज नंबर 529 के ऊपर है, ये वाली हदीस जो है वो पिछले मजलिस के अंदर भी हमने पढ़ ली थी, तो हम आगे पढ़ रहे हैं। पहला पैराग्राफ है 529 के ऊपर कि ये वफ्द वापस आया और तीनों सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं इसका जवाब तुम्हें कल दूंगा, मगर इस पर इंशा अल्लाह नहीं कहा। इसका नतीजा ये हुआ कि चंद रोज तक वही का सिलसिला मुनकता हो गया, 12-15 से लेकर 40 दिन तक की मुख्तलिफ रिवायात हैं जिनमें सिलसिला वही बंद रहा, यानी नबी अलैहिस्सलाम हैं और उन्होंने लोगों से वादा कर लिया है कि मैं तुम्हें कल इसका जवाब दूंगा, और उन्होंने जो ये वादा किया है तो हरगिज हरगिज नबी अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात नहीं आ सकती कि मैं खुद तलाश करके इसका जवाब तुम्हें दूंगा, मैं किताबों में तलाश करूंगा फिर तुम्हें इसका जवाब दूंगा, या मैं जो हूं वो लोगों से पूछूंगा फिर उलमा के पास जाऊंगा फिर वहां से पूछ करके मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा, यानी अपनी तहकीक के ऊपर भरोसा करते हुए नबी अलैहिस्सलाम ने तो हरगिज ये नहीं फरमाया था ना कि मैं कल तुम्हें जवाब दूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने किस बात के ऊपर भरोसा करते हुए बात कही थी कि मैं कल तुम्हें जवाब दूंगा, वही के ऊपर भरोसा करते हुए, इस बात का इकरार करते हुए अपने दिल के अंदर कि अल्लाह मुझे बताएंगे तब मैं जो है वह तुम्हें जवाब दूंगा, अपने ऊपर तो भरोसा नहीं किया था, अल्लाह पे भरोसा किया था ना, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह कहना भूल गए, और वो भुलाया भी अल्लाह ही ताला ने, जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ही नबी अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर बात डालते हैं, नबी अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर से बात निकालते हैं, अल्लाह के हाथ में सब कुछ, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, राइट। वो अपने नफ्स की किसी ख्वाहिश की बुनियाद पर तो बात करते ही नहीं है, है? वमा यंतिकु अनिल हवा, तो नबी अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने ये भूल करवाई, और इस भूल के ऊपर फिर नबी अलैहिस्सलाम को बजाहिर एक तंबीह भी फरमाई, राइट, एक तंबीह भी फरमाई 12 दिन से लेकर के 14 दिन तक की रिवायात हैं, यानी कुछ रिवायात के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम के पास वही 12 दिन तक नहीं आई, किस कुछ रिवायात के मुताबिक 15 दिन के तक वही नहीं आई, और कुछ के मुताबिक जो है वो 40 दिन तक नबी अलैहिस्सलाम के पास ये जवाब नहीं आया। क्या गुजरी होगी आका अलैहिस्सलाम के ऊपर, ठीक है, कैसी आजमाइश आई होगी कि दुश्मनों के सामने ऐसी यानी है ना फेस करना पड़ा, लफ्ज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस किस्म के अल्फाज किए जाते हैं इनके ऊपर, ऐसे मौके के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, वो लफ्ज नबी अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अल्लाह ताला इससे हमें क्या सिखाना चाहते थे, है ना? नबी अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के महबूब हैं, थे, रहेंगे हमेशा। इस वाक्य से हमें क्या सिखाना चाहते हैं कि बेशक तुम्हारे दिल के अंदर कोई बात अच्छी है भी ना, फिर भी तुम इसको कहो, राइट, जुबान से भी अदा करो। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम से क्या गलती यहां पर अल्लाह ताला ने करवाई, गुनाह तो नहीं था ये, हरगिज गुनाह नहीं था, लेकिन एक भूल थी, एक गलती थी कि दिल में तो था कि अल्लाह ही मुझे बताएंगे, लेकिन जुबान से इसका इजहार नहीं किया, इंशा अल्लाह कहा नहीं, जुबान से अदायगी नहीं करी इसकी, उधर ही पकड़ आ गई, उधर ही जो है ना नबी अलैहिस्सलाम की पकड़, नाउज बिल्ला अस्तग़फ़िरुल्लाह, पकड़ का लफ्ज भी सही नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना? यानी अल्लाह ताला ने जो है ना वो एक मुहिबाना महबूबाना तंबीह कर दी नबी अलैहिस्सलाम को। ठीक है, तो हमें भी जो है ना वो इजहार भी करना, ये भी बड़ा अहम होता है। तो कुरैश मक्का को तान और तशनीर का मौका मिल गया कि कल जवाब देने को कहा था इन्होंने और आज इतने दिन हो गए जवाब नहीं मिला, राइट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी परेशानी हुई, और कितनी ज्यादा परेशानी हुई होगी सोच लें जरा, कि फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अमीन, जिब्राइल अमीन ये आयत लेकर नाजिल हुए, वला तकूलन्ना लिशैइन इन्नी फाइलुन, ठीक है ना, कि तुम हरगिज ये बात कहना किसी चीज के बारे में कि मैं उसको करने वाला हूं, ज़ालिका गदन है कल, इल्ला अय्यशा अल्लाह, सिवाय इसके कि अल्लाह ताला चाहे तो मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, जिसमें आपको ये तलकीन की गई है कि आइंदा किसी काम के करने का वादा किया जाए तो इंशा अल्लाह कह कर किया जाए। और इसके बाद रूह के मुतालिक ये आयत सुनाई जो ऊपर मजकूर हुई, और गार में छुपने वालों के मुतालिक असहाबे कहफ का वाकया, और मशरक से मगरब तक सफर करने वाले जुलकरनैन का वाकया जो सूरह कहफ में आने वाला है, उसकी आयात नाजिल हुई, जिन्हें असहाबे कहफ और जुलकरनैन का वाकया जिनमें असहाबे कहफ और जुलकरनैन का वाकया पूरी तफसील के साथ जवाब में बयान फरमाया गया, और रूह के मुतालिक जिस हकीकत का सवाल था उसका जवाब नहीं दिया गया। ठीक है, कि उन्होंने जैसे यहूद की बतलाई हुई अलामत सिद्क नबूवत की जाहिर हो गई, इस वाक्य को तिर्मिजी ने भी मुख्तसरन बयान किया है। ठीक है, तो ये यहूद के ही सवाल थे कि जिनकी बुनियाद पर सूरह कहफ नाजिल हुई, कितनी तफसील के साथ असहाबे कहफ का और जुल्कनैन का वाकया, इवन सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो सारी तफसील नाजिल हुई है वो भी यहूद के ही सवाल के जवाब में नाजिल हुई थी, पूरी सूरह यूसुफ। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ अलग अलग वाकयात हैं, कभी किसी चीज का सवाल किया, कभी किसी चीज का सवाल किया, अल्लाह ताला ने इस तरह से जवाब अता फरमाए। अच्छा, सूरह हजर की आयत नंबर 29 में नफख्तु फीहि मिन रूही के तहत रूह और नफ्स वगैरह की हकीकत के मुतालिक एक तहकीक बहवाले तफसीर मजहरी पहले गुजर चुकी है, जिसमें रूह की अकसाम और हर एक की हकीकत को काफी हद तक वाजह कर दिया है। ठीक है, ये हम इस क्लास के अंदर उसको पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि फिर वो दूसरी सूरत है, और वो जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो फिर उसकी, सॉरी मैंने सूरह हजर पढ़ दिया, हिजर हिजर है सही वर्ड ना, जब हम कभी वो सूरत पढ़ेंगे तो उसके अंदर वो तफसीर इंशाल्लाह आ जाएगी, पहले जो है वो काफ़ी दिन लग चुके हैं इस मार्फ़ मसाइल को पढ़ने में। तो आगे बढ़ते हैं कि वाला इन शेना ननबन्ना, पिछली आयत में रूह के सवाल पर बकदर ज़रूरत जवाब देकर रूह की हकीकत दरियाफ्त करने की कोशिश से ये कहकर रोक दिया गया था कि इंसान का इल्म कितना ही ज़्यादा हो जाए मगर हकायकुल अशिया की हमागीरी के एतबार से कम ही रहता है, इसलिए गैर ज़रूरी मुबाहिस और तहकीकात में, यानी गैर ज़रूरी बहसों में और गैर ज़रूरी तहकीकात में उलझना अपने वक्त को ज़ाया करना है। ठीक है, यानी जो चीज जिनके ऊपर आपकी कोई जरूरत डिपेंड ना करती हो, तो उसकी तहकीक करना जो है ना, वो इंसान के वक्त को जाया करना है। ठीक है, तो अब पहले भी हमारी क्लासरूम के अंदर बात हो चुकी है कि एक के लिए जिंदगी को देखने का जो रुख जो है ना, वो हर वक्त जो है वो तहकीक करते रहते हैं। ठीक है, अब वो साइंसी तहकीक का नाम उसको दिया जाता है, तो उसके लिए जो है वो जमीन की चीजों के अंदर भी तहकीक करते रहते हैं, और जो है वो आसमान की चीजों पर भी तहकीक करते रहते हैं, हत्ता के खला के ऊपर भी जो है वो तहकीक करते रहते हैं, जानवरों के ऊपर भी तहकीक करते रहते हैं, और मुख्तलिफ चीजों के ऊपर तहकीक करते रहते हैं। ठीक है, तो अब जो है ना वो हम मुसलमान उनको देखते हैं कि जी ये कितनी तहकीक कर रहे हैं, तो हम जो है ना वो बहुत इससे मुतासर होते हैं, और बहुत जो है ना इसके ऊपर उनकी वाह वाह करते हैं कि देखो ये कितना अच्छे से कितनी गहराई के अंदर जाते हैं, कितनी जो है उसकी यानी इन्होंने चीज़ें इजाद कर ली हैं, और कितनी जो है वो इन्होंने हकायक जो है वो चीज़ों के बारे में मालूम कर लिए हैं। तो इस चीज़ की वजह से जो है ना वो हमारे ऊपर इनका एक बहुत बड़ा रोब बनता है, और बहुत हम जो है ना वो उनकी इस चीज के ऊपर जो है वो यानी तारीफ करते हैं, दिल के अंदर इसकी जो है वो कदर करते हैं कि उन्होंने कितनी तहकीकात करी। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमारे अंदर भी शौक पैदा होता है कि जी हम भी इसी तरीके से तहकीकात करें, हम भी इसी तरीके से जो है ना वो नॉर्थ पोल पे चले जाया करें, कभी जो है कभी साउथ पोल पे चले जाया करें, कभी जो है वो अमेजोन फॉरेस्ट के अंदर चले जाया करें, कभी जो है वो रिवर नाइल के अंदर चले जाया करें, कभी जो है वो किसी K2 पहाड़ के ऊपर चले जाया करें। तो अब मुसलमान भी पीछे पीछे वो भी जो है वो तहकीक करें, क्योंकि तहकीक करना बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो भाई इसके अंदर जो है ना वो हमें चंद बातों का लिहाज रखना बहुत जरूरी है कि मुसलमान के दुनिया को देखने का जो रुख होता है ना वो काफिर के रुख से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। हम इस दुनिया के अंदर अल्लाह की बंदगी करने के लिए आए। ठीक है, क्या मतलब? नमाज बिछा करके टपा टप सजदे करने के लिए आए? नहीं, ये मतलब नहीं है अल्लाह की बंदगी करने का। हम इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए आए हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए आए हैं, ताकि इस मुख्तसर ज़िंदगी को हम अपने आखरत के लिए ज़रिए सवाब बना सकें, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी के लिए, इस मुख्तसर ज़िंदगी के जो है वो सवाब कमाने की जगह बना सकें। ये हमारे लिए एक मार्केट है जिसके अंदर हमने प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है ना, और ये प्रॉफिट हमें इस्तेमाल किधर करना है? ये इस्तेमाल हमारा फिर आखिरत के अंदर होगा, दुनिया में भी थोड़ा बहुत उसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी बाजार में जाकर के अपना स्टॉल लगाती हैं। ठीक है ना, उस बाजार के अंदर आपका मकसद क्या होता है? मैं प्रॉफिट कमाऊंगी, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊंगी, और फिर उस पैसे को जो है ना वो अपने घर लेके जाऊंगी, घर में जो है वो अच्छे से फिर नई नई चीजें खरीदूंगी, अच्छे से खाऊंगी पीऊंगी मजे उड़ाऊंगी। ठीक है ना, लेकिन वो जो प्रॉफिट आप बाजार में कमा रही होती हैं, उस प्रॉफिट से आप बाजार में जो आपका वक्त गुजर रहा होता है, तो वहां पर भी तो उसको खर्च कर रही होती है ना। जैसे आपको दोपहर का वक्त हो गया, आप जी भूख लग रही है बाजार के अंदर, अब आप ये तो नहीं कहती हैं कि नहीं, प्रॉफिट जो मैंने कमाया है ये तो मैं घर जाकर के इससे फायदा उठाऊंगी, अभी तो मैं भूखी रहूंगी, ऐसा तो नहीं होता ना। बल्कि जितनी आपको खाने की जरूरत पड़ती है बाजार के अंदर रहते हुए, तो आप उस कमाई से खाना खरीदती हैं और खाना खाती हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद अगर शाम हो जाती है, फिर आपको चाय की जरूरत पड़ती है, तो कहने चाय के लिए मैं उधार ले लूंगी किसी से, अपना प्रॉफिट इस्तेमाल नहीं करूंगी, क्योंकि वो तो मैंने घर के लिए कमाया था प्रॉफिट। नहीं, उसी प्रॉफिट से आप चाय भी खरीद लेती हैं, बिस्किट भी खरीद लेती हैं। ठीक है ना, गर्मी लगती है तो आप कुछ पंखा वंखा भी खरीद लेती हैं, सर्दी लगती है तो आप कुछ चादर शादर भी खरीद लेती हैं, कहीं मुझे सर्दी लग रही है अब शाम होने वाली है,
तो आप बाजार में रहते हुए भी अपने प्रॉफिट से फायदा उठाती हैं, लेकिन असल फायदा किधर उठाना है, घर वापस जा करके उठाना है। ठीक है, तो दुनिया की जिंदगी का भी यही मामला है कि दुनिया की जिंदगी में जो हम सवाब कमाते हैं, इस सवाब का फायदा हम दुनिया में ही उठाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो बहुत कम और मुख्तसर फायदा होता है। असल फायदा इस सवाब का हमें कहाँ मिलेगा, जब हम घर वापस जाएंगे। और घर हमारा क्या है, आखिरत की जिंदगी यानी जन्नत, ठीक है, जो कि आखिरत की जिंदगी में होगी। तो इस वजह से मुसलमान के लिए तो ये प्रॉफिट मेकिंग लोकेशन है दुनिया, ठीक है। अब प्रॉफिट मेकिंग के लिए उसको कुछ उसूल और कवायद होते हैं, बाजार के कुछ कानून होते हैं, उस कानून के तहत ही आप प्रॉफिट बना सकते हैं, उस कानून के खिलाफ जाकर के आप प्रॉफिट बनाएंगे तो भाई बाजार के अंदर फिर गवर्नमेंट के एजेंट्स भी तो होते हैं ना, पुलिस वाले भी तो होते हैं ना। अगर आप खिलाफ कानून के खिलाफ जा करके प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको पेनल्टी भी लगेगी, आपकी दुकान को हो सकता है जो है ना वो बंद कर दिया जाए थोड़ी देर के लिए, या आपको जो है वो पता चला बिल्कुल ही नाम काट दिया जाए आपका बाजार में से, ठीक है। तो कवानीन के मुताबिक आपको प्रॉफिट बनाना है, ये हमारी जिंदगी का खुलासा है। अब हमारे पास एक महदूद वक्त है इस दुनिया के अंदर जिसके अंदर हमने प्रॉफिट बनाना है, और प्रॉफिट कैसे बनाना होता है, प्रॉफिट बनाने का तरीका क्या है इस्लाम के अंदर, प्रॉफिट बनाने का तरीका क्या है। अगर सादा तरीन अल्फाज में आपसे पूछा जाए, एक लफ्ज या दो अल्फाज में पूछा जाए कि इस्लाम हमें प्रॉफिट बनाने का क्या तरीका बताता है, तो वो आप जल्दी से बताएं। प्रॉफिट बनाने का क्या तरीका है, दो लफ्जों में जवाब चाहिए जो कि इस बात को वाजह करता हो कि हम और काफिर बिल्कुल मुख्तलिफ, ठीक है। वो जिस तरीके से तहकीकात करते हैं, हम उस तरीके से तहकीकात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो मार्केट में प्रॉफिट बनाना है, और प्रॉफिट बनाने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है। कुरान की तफसीर सीखना हम सब पर फर्ज है, इखलास और सुन्नत, ये किधर से क्या बोल रही हूँ मैं, सवाल कुछ और कर रहा हूँ। इन्होंने कहा सुन्नत का तरीका, सुन्नत तरीका, सुन्नत तरीका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलना, ठीक है। आपका जवाब गलत नहीं है, लेकिन इस कॉन्टेक्स के हिसाब से ये जवाब सही नहीं है। काफिर अपनी जिंदगी नॉर्थ पोल में, जंगल्स में, सहराओं में तहकीकात करके निकालता है, हम हमारे हम नहीं, नहीं नहीं कर सकते ये वाला काम, क्यों, इसलिए कि हमने तो प्रॉफिट बनाना है। जी, अब सही जवाब आया, हमने प्रॉफिट कैसे बनाना है इस दुनिया की जिंदगी में, हुकूक की अदायगी करके प्रॉफिट बनाना है, हुकूक की अदायगी करके प्रॉफिट बनाना है। अगर हम हुकूक की अदायगी नहीं करेंगे तो हम इस दुनिया में प्रॉफिट नहीं बना सकते। हुकूक की अदायगी सबसे पहले अल्लाह का हक, फिर नबी अलैहिस्सलाम का हक, राइट, वालिदैन का हक, बीवी का हक, बच्चों का हक, शौहर का हक, पड़ोसियों का हक, रिश्तेदारों का हक, अगर आपके तहत लोग काम करते हैं, नौकर चाकर, उनका हक, हमें हुकूक अदा करके प्रॉफिट बनाना है। अगर हम जो है वो घर बार छोड़ करके चले जाएंगे हैं तहकीक करने के लिए फलां जगह पर और फलां जगह पर और फलां जगह पर, तो बीवी बच्चों का हक कैसे अदा होगा, राइट, वालिदैन बूढ़े हो जाएंगे, उनका हक कैसे अदा होगा, ठीक है। तो हम तो ये सारे काम नहीं कर सकते ना, हत्ता के बहुत ज्यादा अगर सफर करना शुरू कर देंगे, अल्लाह का भी हक अदा करना जो है वो, यानी नमाज पढ़ना भी जो है वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने तो हुकूक अदा करने हैं, ये हमारी जिंदगी का मकसद है, और काफिर को हुकूक अदा नहीं करने, उसने तो जाहिर सी बात है दुनिया जन्नत और काफिर, उन्होंने तो उसने तो इस दुनिया के अंदर जो है वो मजे करने हैं, तहकीक करके मजे मिलते हो तो तहकीक करके मजे करेगा, और जो है वो नाच गाना करके मजे मिलते हो तो नाच गाना करके मजे करेगा। उसकी तो जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ है हमसे। हमारे यहाँ तो तहकीक अगर करनी भी है ना, अगर मुसलमान तहकीक करता भी है तो वो भी हुकूक की अदायगी के लिए ही तहकीक करता है, उसकी तहकीक का मकसद भी हुकूक की अदायगी ही होता है, बगैर इस मकसद के वो तहकीक नहीं कर सकता, बिला मकसद तहकीक नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो अब हम जो है, क्योंकि हमारा तालीमी निज़ाम, हमारा पूरा का पूरा सोच का निज़ाम जो है वो काफिरों के तहत है। तो इस वजह से काफिर जो है वो तहकीक करते हैं, अपने तहकीक की बड़ी बड़ी जो है ना वो डिस्कवरीज और बड़े बड़े उसके जो है वो कारनामे जो है वो अपनी किताबों के अंदर खूबसूरत तस्वीर के साथ भी डालते हैं, और खूबसूरत उसकी वीडियोस भी बनाते हैं, और टीचर्स की जुबानी भी जो है वो अपने तहकीकात के जो बड़े बड़े उनके नतायज निकले हैं वो टीचर्स भी बयान करते हैं। तो अब मुसलमान बच्चा या मुसलमान नौजवान इन बातों को पढ़ता है तो वो तो अजमत कुफार है, कुफार की तहकीकात की अजमत, कुफार की जो है वो कामयाबियों की अजमत, वो तो उनका दिलदादा हो जाता है, वो तो बिल्कुल उनका असीर हो जाता है। ठीक है, इन्होंने लिखा कि इसीलिए मुसलमान टाइटैनिक देखने के लिए चले जाते हैं समुंदर की गहराई में, है ना। अब मुसलमान की जिंदगी में समंदर की गहराई में जाकर के 75 साल पहले डूबा हुआ कोई जहाज की मलबा देखना है? तो ये किधर से भाई, कहाँ से इस्लाम में ये चीज जायज हो गई, कहाँ से जो है वो आपकी जिंदगी के मकसद में एक मकसद ये बन गया कि आपने जो है वो समंदर की गहराई में जाकर के डूबे हुए जहाज के जो है वो रैकेज को देखना है। ठीक है ना भाई, क्यों क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि काफिर ये काम करते हैं भाई। उस जो सबमर्सिबल व्हीकल थी उसके अंदर कौन बैठे हुए थे? सारे सारे काफिर बैठे हुए थे। अनफॉर्चुनेटली उनकी मगफरत फरमाए, उनके जो जो नेकी के भी काम उन्होंने कुछ किए, बड़ा सुना है कि बड़ी सबका खैरात वगैरह का भी काम करते थे वो लोग, तो अल्लाह उसको जो है वो मगफरत का सब वसीला बना दे। ठीक है, लेकिन हरकत तो ये बिल्कुल बेतुकी हरकत थी ना, बिल्कुल यानी जिसका कोई जवाज नहीं बनता। आपकी जिंदगी में अल्लाह ताला ने जो मौके दिए हैं वो जाया करने के लिए तो नहीं दिए हैं इस तरह के, जाया कर रहे हैं तो फिर उसके ऊपर इस्तग़फ़ार करना चाहिए। ठीक है ना, उसके ऊपर खुश तो नहीं होना चाहिए ना, उसके ऊपर जो है वो यानी लोगों के सामने जो है वो डेंगे मार रहे हैं कि जी मैंने ये भी देख करके आ गई, मैं वो देख करके आ गया, मैं ये नहीं देख कर लिया वो कर लिया। ठीक है भाई, मकसद के लिए, मकसद, एवरीथिंग हैज़ टू बी गोल ओरिएंटेड, एवरीथिंग हैज़ टू बी मकसद ओरिएंटेड। और वो मकसद क्या है हमारी जिंदगी का? हुकूक की अदायगी, हुकूक की अदायगी। अल्लाह ताला हम सबको बात की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।